खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पालूस की ज़िंदगी में से उसकी ज़िंदगी की लिखी हुई सच्चाई में से जो खुदावंद खुदा ने मकाशफा वो भेद वो सच्चाई जो उसे बख्शी जो बहुत से दूसरे नबियों और रसूलों पर जाहिर ना की गई थी उसके वसीला से आज सीखेंगे कि वो भेद कितना अजीब और कितना पुरफजल और बाबरकत है। और पालूस तीसरे बाब की पहली आयत में कहता है, इसी सबब से मैं पालूस जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यसु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर झुक जाएं, खुदावंद से उसकी हिकमत और दनाई मांगेंगे कि खुदावंद आज हमने जो कुछ भी तेरे कलाम में से पढ़ा है, पालूस के वसीला से जो सच्चाई तूने लिखवाई है, दर्ज की है, तहरीरी मकाशवा में से सीखने वाले बने और उस पर अमल करके पालूस की तरह तेरे जलाल तेरी गवाही के लिए उन जगहों पर जाने वाले बने, उन लोगों को तेरे कलाम के बारे में अपनी ज़िंदगी से गवाही देने वाले बने जिन्होंने अभी तक तेरा नाम नहीं सुना। खुदा बाप हम सबको हिकमत और दनाई दे ताकि हमारा बोलना उठना और हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह की गवाही ठहरे, बग़ैर अल्फाजों के ऐसी खुशखबरी का पैगाम बने गैर कौमों के लिए कि वो भी तेरी मीरास बने। और आज के कलाम के वसीला से हम सबको संभाल और बरकत दे ताकि इस आरजी दुनिया में तुझ अबदी खुदा को तकते रहें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कल हमने देखा था कि पालूस रसूल पांचवीं आयत में कहता है कि ये वो भेद है जो बहुत सी पुश्तों, जब लफ्ज़ हम देखते हैं ज़मानों तो इसका दूसरा मतलब निकलता है पुश्तों से, बहुत से ज़मानों में जो बनी आदम से ये भेद क्या था, पोशीदा था, उन पर ज़ाहर नहीं किया गया। और वो भेद क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इंसान खुदा का मकदस बनेगा, यानी कि उसके रहने की जगह, उसके सकूनत की जगह जहाँ पर खुदा खुद बसेरा करेगा। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से हवाला जात मिलते हैं जो वाज़ह तौर पर पालूस सिखाता है। पहला तो इसी ही बाप में है, इसी ही कहते हैं कि बाप में पालूस कहता है कि हम सब को उसी रूह के वसीला से खुदा तक पहुंच होगी। फिर पिछले ही बाब में वो कहता है कि हमें रूहुल कुद्दस के वसीला से क्या की गई है, हम पर मोहर की गई है, रूह हमें बयाना में दिया गया है ताकि वो बाकी तमाम बरकात जब हम उसकी हजूरी में हों तो हासिल करें। फिर वो पहला करंथियों उसके तीसरे बाब की 16-17 आयत में कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो। फिर पहला करंथियों 6 उसकी 19-20 आयत में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो। फिर दूसरे करंथियों के 3 में वो कहता है कि खुदा तुम में बसता है, उसे बुतों और पत्थरों से क्या मुनासबत, क्या उसे उनसे कारोबार, वो तुम में रहता है। तो आज हम देखेंगे कि पालूस 6 आयत में कहता है, जैसा हमने पिछली आयत में देखा, पहली आयत में वो बयान करता है कि वो क्यों कैद खाना में है, मसीह की खुशखबरी के बायस। दूसरी आयत में वो उन लोगों को ये याद दिलाता है, कहता है, यकीन दिलाता है कि मुझ पर खुदा का फजल इसलिए हुआ है ताकि तुम उस फजल से वाकिफ हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जब हमें खुदा बरकत देता है तो खुदा की वो बरकत देने की वजह या उसके पीछे खुदा का जो मकसद है वो ये है कि उस बरकत के बारे में दूसरों को भी बरकत दें, दूसरों के लिए भी बरकत का बायस ठहरें। क्योंकि सच्ची मोहब्बत और सच्ची बरकत का भी यही हाल है कि जब हम बरकत पाते हैं तो ज़रूर है कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस ठहरें। और तीसरी आयत में हमने देखा था, वो कहता है कि मुझे ये मुकाशफात जो हासिल है, ये मुकाशफात मैंने तुमको मुख्तसर तौर पर लिखे, यानी कि वो पिछले ही बाब में बयान करता है कि तुम मसीह यसु में कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, खुदा में तुम्हें क्या कुछ हासिल है, फजल ही से तुमको निजात मिली है, और बहुत सी वो बातें जो भेद की हैं जो पहले कलीसिया पर जाहिर नहीं की गई थी वो बयान करता है। और फिर हमने चौथी आयत में देखा था, वो कहता है कि इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं वो मसीह का भेद किस कदर समझता हूँ, जो इस तरफ इशारा है कि तुम मुझ पर शक ना करो, मैं मसीह का वाकया ही रसूल हूँ, मसीह वाकया ही मुझ पर जाहिर हुआ था और मैं वाकया ही उस रास्ते पर था कि मसीहियों को कत्ल करूं और खुदावंद यसु मसीह का नूर मुझ पर चमका और मैंने अपनी ज़िंदगी उसकी हजूरी में दे दी। और फिर पांचवी आयत पर हमने देखा था, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, यानी कि वो भेद, वो मकाशफा जो उसे डायरेक्ट सीधा खुदावंद यसु मसीह की तरफ से मिला। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों उसका बारहवां बाप, दूसरा करंथियों उसका बारहवां बाप उसकी पहली आयत में पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को ये बयान करता है जब उसने खुदावंद यसु मसीह से ये मुकाशफा हासिल किया। दूसरा करंथियों बारहवां बाप उसकी पहली आयत, पालूस कहता है मुझे फख्र करना तो ज़रूर हो अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मकाशफे खुदा की खुदावंद की तरफ से अनायत हुए उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, ना मुझे ये मालूम के बदन समेत ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। यहाँ पर वो अपने बारे में बात करता है कि ये 14 साल पहले की जो बात है वो अपने बारे में कर रहा है कि मुझे वो रोया, वो मकाशफे, वो भेद खुदावंद से मिले जब वो खुदावंद की हजूरी में था, जब वो तीसरे आसमान पर था। किसी को पता है कितने आसमान हैं? 3। कितने हैं? 3 आसमान। बहुत से लोग कहते हैं कि 7 आसमान हैं, ये लोगों की सोच है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है 3। 3 आसमान है जिसके बारे में हमने पहले तालीम पाई है कि पहला आसमान किस तरह का है बाइबल बताती है, दूसरा आसमान क्या है और तीसरा आसमान वो है जहां पर खुदावंद खुदा की हजूरी है। और इसी तरह पालूस कहता है कि मुझे ना कि सिर्फ 14 बरस हुए जब मैं तीसरे आसमान पर उठाया गया, वहाँ पर मुकाशफे मिले। आगे चलकर जब हम गलतियों के खत में देखते हैं, गलतियों पहला बाप उसकी 11वीं आयत में भी वो उन तमाम मसीही बहन भाइयों को जता देता है क्योंकि वो भी झूठी तालीम के बायस गलतियों की कलीसिया में एक नया टोला आ गया था। वो टोला कौन सा था, वो गुरोह कौन सा था? वो कहते थे कि मसीह का मरना बेफायदा है इसलिए उसकी खुशखबरी भी बेफायदा है। वो कहते थे मसीह मर तो गया है सलीब पर लेकिन उसने निजात का काम मुकम्मल नहीं किया। ये उस वक्त के लोगों का क्या था, तालीम का सिलसिला था जो पालूस के पीछे आते थे, जो मसीह के कलाम को बिगाड़ते थे, जो मसीह की तालीम को बदलते थे, जो पालूस ने सच्चाइयाँ बयान की थी उनको क्या करते थे, तब्दील करते थे। तो पालूस रसूल उनको कहता है कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई है, अगर उस खुशखबरी को कोई इंसान, खा आसमान का फरिश्ता, और खा कहता है कि मैं खुद, यहाँ पर लिखा हुआ है गलतियों पहला बाप उसकी छठी आयत में कहता है कि मैं ताज्जुब करता हूँ जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। और फिर कहता है आठवीं आयत में, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो वो मालाउन हो। सादा लफ्ज़ों में, मैं या कोई और अगर तुम्हें कोई दूसरी खुशखबरी सुनाए तो वो लानती ठहरे। और फिर ग्यारहवीं आयत में कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। क्योंकि जो लोग आते थे वो कहते थे कि हाँ खुशखबरी यही है, लेकिन उसके साथ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है, और वो मसीह के उस काम को जो सलीब पर किया गया था उस पर मजाक उड़ाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, कहते हैं कि वो कहते थे कि मसीह की जो कुर्बानी है वो बेफायदा है अगर तुम इस बात पर अमल नहीं करते, अगर तुम अपने ज़िंदगी में शरीयत के 10 अहकाम को या फिर दा यकी को या फिर चांद और सूरज की ईद को या फिर दूसरे त्यौहारों को नहीं मनाते तो तुम अभी तक भी दोज़ख के फर्जंद हो। वो लोगों को डराते थे। सो पालूस रसूल कहता है कि ये मकाशफा, ये भेद, ये सच्चाइयाँ मुझे जो हासिल हुई हैं, बारहवीं आयत में वो कहता है मेरी खुशखबरी इंसान की सी नहीं, क्योंकि मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची। अगर मैं कोई आपको चीज़ देता हूँ तो आप कहेंगे कि मुझे पादरी साहब ने ये चीज़ दी है। अगर मैं आपको बाइबल दूं तो आप कहेंगे कि ये बाइबल मुझे वहाँ से आरवाला से पहुँची है, डाक के ज़रिए या फिर किसी ने रूबरू मुझे दी है। तो पालूस जब कहता है क्योंकि मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना ही मुझे और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। यीशु मसीह ने खुद पालूस रसूल को सिखाया उस भेद के बारे में, पालूस रसूल को बताया कि सच्चाई क्या है। पालूस रसूल ने उस भेद को जाना और फिर अपनी खिदमत को समझा। और क्या किया, जब हम देखते हैं पालूस रसूल अपने बारे में जान जाता है कि खुदावंद खुदा ने मुझे गैर कौमों के लिए मसीह का खादम होने के लिए बुलाया, तो वो क्या करता है, सबसे पहले गैर कौमों के पास खुशखबरी सुनाने को जाता है। और यही बात पालूस रसूल इफिसियों 3 बाब उसकी 6 आयत में कहता है, कहता है कि वो मकाशफा, वो भेद जो अब जाहिर हो चुका है, 6 आयत में कहता है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक हों। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, आज के दौर में भी देखते हैं, यहूदी किसी को इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा की बरकत का वारिस नहीं समझते। यहूदियों में बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो आज भी मसीह के होने का इनकार करते हैं। बहुत से यहूदी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि मसीह आने वाला है। वो फरेब में हैं, वो धोखे में हैं, लेकिन बहुत से यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, वो मान गए हैं कि आज से 2000 साल पहले जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था वही मसीह था, मसा किया हुआ था, जो सबूतों के तौर पर जिसने अजीब अजीब मौजज़े किए मुर्दों में से जी उठा, और उसकी कब्र आज भी खाली है। लेकिन बहुत से लोग जैसे उस दौर में हैं आज भी हैं, क्या करते हैं, अपने आप को, अपने दिलों को सख्त किया हुआ है। सो पालूस कहता है कि ये मसीह की खुशखबरी का जो बरकत का निज़ाम है वो क्या है कि मुझे गैर कौमों के लिए मसीह का खादम बनने का शरफ हासिल हुआ। हमने देखा था कि शिगिर्दों को इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया, लेकिन पालूस को ख़ास कर कहाँ पर भेजा गया, गैर कौमों के पास। मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो 11 बाप उसकी 13 आयत। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 11 बाप उसकी 13वीं आयत में खुदावंद का बंदा यूं कहता है, वो यहूदियों को याद दिलाते हुए, यहूदी जो अपने दिल में सख्त है, यहूदी जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही बरकत के और यस और खुदावंद इसराइल के खुदा के चुने हुए लोग हैं, कोई और नहीं हो सकता, पालूस उनको याद दिलाता है कि तुम खुदा नहीं, खुदा खुद खुदा है। तुम जहन बदल सकते हो, खुदा अपना जहन नहीं बदल सकता। तुम फरेब खा सकते हो, खुदा फरेब नहीं खा सकता। तुम तो भूल चूक कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। तो 13वीं आयत में कहता है, मैं ये बातें तुम गैर कौम से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की भड़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर, अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊँ। वो उनको गैरत दिलाने के लिए, उनको होश दिलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कहता है कि मैं गैर कौमों के लिए मुकर्रर हुआ हूँ, ताकि उनको जाकर मसीह की खुशखबरी सुनाऊँ। और फिर 15 बाप उसकी 15वीं आयत में भी वो दोबारा इस बात को यहूदियों पर और तमाम अपने सुनने वालों पर बयान करता है। यहाँ पर भी वो इसी बात के बारे में उनको नसीहत करता है, उनको मार्फत की बातें बताता है और कहता है, तो भी मैंने बाज़ जगह ज़्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदावंद की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यसु के खादम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर रूहुल कुद्दस से मुकद्दस बनकर मकबूल हों। गैर कौमें रूहुल कुद्दस के नज़र यानी कि उसके वसीला से क्या बने, मुकद्दस बने। गैर कौमें उस दौर में और आज भी क्या गिनी जाती हैं, नापाक गिनी जाती हैं। तो पालूस कहता है कि मुझे खुदा ने इसीलिए मुकर्रर किया था। सवाल आज ये है कि पालूस ने अपनी खिदमत की, हमें भी खुदा ने इस खुशखबरी, इस भेद को गैर कौमों तक पहुंचाने की खिदमत बख्शी है। सो क्या हमारी ज़िंदगी उस खुशखबरी का प्रचार कर रही है, ऐलान कर रही है, मनादी कर रही है या नहीं। सो ये सवाल आपके और मेरे दरमियान है कि हम किस तरह मसीह की मनादी कर रहे हैं, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में से उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में यही हम सब के लिए, खुदा का कलाम क्या करता है, सदा करता है, बताता है, हमें ऐलान करता है, हमें ख़बर देता है, हमें समझाता है, नसीहत करता है, और सबसे बड़ी बात हुक्म देता है कि जाओ और सब कौमों को जाकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, जाओ सब कौमों को जाकर यीशु मसीह के नाम के बारे में बताओ, उनको खुशखबरी दो। सो फैसला हम सब के हाथ में है, आए हम खुदावंद के हजूर झुके हैं।